आत्मचिंतन से होगा आत्म परिवर्तन और आत्म परिवर्तन से होगा विश्व परिवर्तन। यही राजयोग का लक्ष्य है। आत्मचिंतन क्या है और कैसे उससे आत्म परिवर्तन होता है और फिर कैसे उससे विश्व परिवर्तन होता है, ये बहुत बड़ा विषय है। तो आप सब भाई बहने जो भी यहाँ इस राजयोग शिविर में पधारे हो, आप सब राजयोग सीखने की अभिलाषा लेकर आए होंगे। योगी तो आप सभी हो ही, क्योंकि व्यक्ति वस्तु वैभव स्थान परिस्थिति घटना आदि से हम सब का योग है और मन इन चीजों में इतना दौड़ता है जो ये शिकायत बनी रहती है कि मन बड़ा चंचल है, पापी है, दुष्ट है, नीच है, घोड़ा है आदि आदि न जाने कितनी बातें हम मन के लिए कहते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि मन शांत हो जाए, थोड़ा सोचे नहीं, उसके लिए उसे शून्य बनाने की कोशिश करते हैं, परंतु परिणाम इससे उल्टा ही निकलता है। मन को खाली रखने की कोशिश करते हैं अलग अलग तरह के मेडिटेशन करके, परंतु कहावत प्रसिद्ध है कि खाली मन शैतान का घर। खाली मन रखेंगे तो शैतान का घर बन जाएगा, क्योंकि मन को सोच जरूर चाहिए। यह सोचना कि मन कुछ भी न सोचे, यह भी एक सोच ही है, परंतु क्या सोचे और क्या नहीं सोचे, ये है समझने की बातें। और जो नहीं सोचना चाहिए हम उसको कैसे रोक सके, और जो सोचना चाहिए उसको हम कैसे आगे बढ़ा सके, ये आवश्यक है। इसके लिए शक्ति की जरूरत है। जिस प्रकार गाड़ी को ठीक चलाने के लिए ड्राइवर के पैर के तले एक्सेलरेटर भी होता है तो ब्रेक भी होती है, और जिस समय ब्रेक लगानी है तो वो लगा सके, नहीं तो एक्सीडेंट होने की संभावना है, और जिस समय एक्सेलरेटर दबाना है तो दबा भी सके ताकि गाड़ी स्पीड पकड़े, परंतु उल्टा न हो जाए कि जब ब्रेक देनी है तो एक्सेलरेटर दबा दे तो क्या होगा हाल, या जब स्पीड पकड़नी है तो ब्रेक ही लगाता रहे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो जीवन रूपी गाड़ी में भी इसकी आवश्यकता है, अर्थात हम स्वयं ही स्वयं के पहले मालिक बने। हम औरों के मालिक तो बनना चाहते हैं कि इसको ऐसे नहीं सोचना चाहिए था, इसको ऐसे नहीं कहना चाहिए था, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसको ऐसे करना चाहिए था तो क्यों नहीं किया, इसने ऐसे क्यों नहीं कहा। तो दूसरों के तो हम मालिक बनने की कोशिश करते हैं, नेत्र रस, गंध रस, ये पंच इंद्रियों के रस मन को अपनी ओर खींच लेते हैं, प्रभावित करते हैं और परिणाम स्वरूप मन उनका दास बन गया है। कई उदाहरण दे सकते हैं, हमें ये चीज नहीं खानी है लेकिन नहीं, जीभ में पानी आ गया है ना, मुंह में पानी आ गया, खाओ खाओ। हमें इसको नहीं देखना है लेकिन नहीं, आकर्षण होता है आंखों का रस। हमें इसको नहीं हाथ लगाना है तो भी हाथ लगाने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? इंद्री का रस है और मन उनका गुलाम है। फिर अंतरात्मा आवाज देती है, ये मत करो मत करो, जिसको हम कहते हैं बुद्धि की आवाज। परंतु मन बुद्धि को भी शांत करता रहता है, नहीं सोचो नहीं सोचो नहीं कहो, तो अंतरात्मा की आवाज ही दब जाती है और हम उन गलत कर्मों के अधीन हो जाते हैं और उसका परिणाम है कि हमारे जीवन में हम इंद्रियों के दास बन जाते हैं। तो राजयोग हमें सबसे पहले राजा बनाता है, इंद्रियों का राजा। मन जो इंद्रियों को कहे वही इंद्रियां करें। फिर मन के ऊपर बुद्धि है, जो अंतरात्मा की आवाज निकले वही मन सोचे और फिर वही इंद्रियां करें। तो ये जीवन की गाड़ी बहुत सुंदर चलेगी। परंतु ये सब क्यों नहीं होता है? क्योंकि मनुष्य अपने आप को भूल गया है, जीवन का लक्ष्य ही भूल गया है। हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हम क्यों आए हैं इस संसार में, आखिर जीवन का लक्ष्य क्या है, कहां जाना है। इसलिए गीत बड़े प्रसिद्ध हैं, कहां तेरी मंजिल कहां है ठिकाना, मुसाफिर बता दे कहां तुझको जाना। हम सब मुसाफिर हैं इस संसार में, हमारी मंजिल कौन सी है, ठिकाना कौन सा है, पता ही नहीं। एक तरफ कहते हैं हम भगवान के घर से आए हैं, भगवान के घर जाना है, तो मंजिल ठिकाना तो भगवान का घर है। या फिर कह देते हैं मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में जाना है, तो मंजिल और ठिकाना मिट्टी हो गई। अब सोचने की बात है, भगवान हमारी मंजिल है या मिट्टी हमारी मंजिल है, क्या मंजिल है? अगर वस्तु व्यक्ति वैभव का ही आकर्षण है तो एक दिन तो सब मिट्टी में मिल जाना है। कहा जाता है अंत में क्या होगा, दो गज कफन का टुकड़ा और दो गज जमीन है, यही है जीवन का अंत। जब अंतिम यात्रा पर किसी शव को ले जाते हैं तो यही कहते हैं ना, अर्थी ले जाते हैं। अर्थी का अर्थ क्या होता है? अरथी, जिसमें से रथी चला गया, अब केवल रथ ही बचा है और पंच तत्व को विसर्जित करने जा रहे हैं, वापस लौटाने जा रहे हैं कि जहां से तू आया है तू वहीं जा। अग्नि संस्कार के रूप में पंच तत्व को वापस लौटाते हैं। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं? हे प्रभु, इनकी आत्मा को शांति मिले। तो पंच तत्व तो दे दिए वापस पंच तत्वों को, लेकिन आत्मा की शांति की इच्छा बनी रहती है। तो जीवन का अंत मृत्यु नहीं है, ये तो एक पड़ाव है। जीवन अविनाशी रूप में है, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। देह त्याग तो केवल एक पड़ाव है, जैसे बीच बीच में यात्रा के अंदर हम कहीं न कहीं रुकते हैं, चाय पानी पीने के लिए, रोटी खाने के लिए, थोड़ा सैर करने के लिए, फिर यात्रा पर निकल पड़ते हैं। तो हमारी मंजिल, हमारा ठिकाना ये संसार नहीं है, हम कहीं और से आए हैं। इसीलिए कहना पड़ता है, कहाँ तेरी मंजिल, कहाँ है ठिकाना, मुसाफिर बता दे कहाँ तुझको जाना। तो राजयोग का अर्थ है पहले खुद को पहचानना और फिर उस परम पिता परमात्मा को पहचानना और उनसे संबंध जोड़ना। योग अर्थात संबंध, जोड़, मिलन। जैसे गणित में हम वस्तुओं को जोड़ते हैं और अंत में लिखते हैं योग, कितना जोड़ हुआ उसका। इसी प्रकार आत्मा का परमात्मा से जोड़ हो जाए, ये है वास्तव में राजयोग। राज माना राजा, जिसमें जो सर्वोच्च सर्वोपरि है उसके साथ मन की तार जुड़ जाए। अभी वो तार नहीं जुड़ती है, जुड़ रही है, क्यों? क्योंकि हम अपने आप को ये देह देख रहे हैं। जैसे कोई रेडियो स्टेशन हमें चाहिए, उसकी आवाज हम सुनना चाहते हैं, तो अपने रेडियो की सुई की ट्यूनिंग करनी पड़ती है, उसी मीटर बैंड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ पर अपनी सुई को रखना होता है, तो हमारा रेडियो रिसीवर उस आवाज को कैच करता है। नहीं तो यूं ही घुमाते रहो रेडियो, हम समय वेस्ट करते रहेंगे। कहीं तो कभी तो मिल जाएगी, ये भी सोच लेते हैं कुछ तो मिल जाएगा, पर जो लक्ष्य है उसको तो नहीं पा सकेंगे। इसी प्रकार परमात्मा से मिलना तो हम सब चाहते हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जो ये सोचेगा मुझे नहीं मिलना है। दुख के समय, कष्ट के समय, कोई पीड़ा, कोई तकलीफ, कोई विघ्न, कोई रुकावट, कोई समस्या के समय हम अनजाने में भी परमात्मा को याद जरूर करते हैं और उनसे शक्ति मांगते हैं, शांति मांगते हैं, दया मांगते हैं, रहम मांगते हैं, कृपा मांगते हैं। मांगते जरूर हैं, क्योंकि अंतरात्मा जानती है कि वो कृपालु, दयालु, रहम दिल, रक्षक हमें सहायता करेंगे, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। परंतु अक्सर देखा गया है कि जब कोई ऐसा कष्ट पीड़ा आती है तभी हम याद करते हैं। अगर सदा ही उसकी स्मृति हो तो अनेक कष्टों से, तकलीफों से, विघ्नों से हम बच जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। आंधी तूफान उसको रोकेंगे, रोक नहीं सकेंगे, क्योंकि साथी वो जबरदस्त है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर बहुत होशियार है तो चाहे रास्ता कितना भी खराब होगा, हमें विश्वास है कि ये हमें मंजिल पर जरूर ले जाएगा, पहुंचाएगा, बीच में नहीं छोड़ देगा। इसी प्रकार परमात्मा जिसका साथी हो, जिसका सारथी हो, तो उस व्यक्ति को सब चिंताओं से दूर होने का सहज उपाय मिल जाता है। तो मन में भी अगर उसकी सदा स्मृति हो तो मन इतना शक्तिशाली हो जाएगा जो सहज ही हम इंद्रियों को जीत सकेंगे। लेकिन आज वही तो बड़ी समस्या है कि मन बड़ा चंचल है, फिर पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, व्रत रखते हैं, नियम कोई न कोई करते हैं, यज्ञ करते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, मंत्र जाप करते रहते हैं, बहुत कुछ प्रयत्न करते कि मन कहीं लग जाए भगवान में। लेकिन होता क्या है, एक कहावत है, ज्यों ज्यों दवा की रोग बढ़ता ही गया, रोग बढ़ता ही गया, दवा करते हुए भी क्यों रोग बढ़ा, क्योंकि उस रोग के कारण का तो पता ही नहीं चला। कारण का पता होना चाहिए तो निवारण सहज है। आजकल मेडिकल साइंस में ऐसे तुरंत कोई भी दवाई नहीं दे देते, कहते पहले जाओ ब्लड टेस्ट कराओ, यूरिन टेस्ट कराओ, स्टूल टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, टेस्ट कराओ, न जाने कितने टेस्ट कराते रहते। ये जरूरी है क्योंकि कारण का पता ही नहीं, दवाई दूसरी दे दे तो और ही नुकसान हो जाए फायदे के बजाय। तो इसीलिए क्यों नहीं मन लगता परमात्मा में, सबसे पहला कारण है कि मैं कौन हूँ ये पता ही नहीं है। इसलिए परमात्मा में मन कैसे जाएगा। इस कहा जाता है आत्म अनुभूति से परमात्मा अनुभूति होगी। अगर खुद को ही नहीं पहचाना तो ईश्वर में भी मन नहीं लगेगा। अगर हम अपने आप को यह देह ही समझते रहेंगे तो व्यक्ति वस्तु वैभव ही याद आते रहेंगे, परमात्मा याद नहीं आएगा। और जब ये व्यक्ति वस्तु वैभव सब सहारे जो हम समझ बैठे हैं वो जब छूटने लगेंगे तब वो याद आएगा, क्योंकि अब छूट गए। इसीलिए जब अंतिम यात्रा पर निकलते यही कहते हैं ना, राम नाम सत है, सत बोलो गत है। पर राम नाम सत और सत बोलो गत किसके लिए है, वो शरीर तो सब वो तो संस्कार होने जा रहा है, उसकी गति के लिए कह रहे हैं कि राम नाम सत है, सत बोलो गत है। वो सत कौन, शरीर तो विनाशी है, उसको तो असत्य ही कहा ना। पर सत्य क्या है, ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है। उसको जब तक नहीं पहचाना तब तक हम चाहे दुनिया को कितना भी सत्य समझ के बैठे एक दिन धोखा खाएंगे। हमें दिखाई देता है ये सब सत्य, लेकिन ये सब नष्ट होने में कितनी देर लगती है। सत्य तो वो होता है जो नित्य है, जो अविनाशी है, जो सदा है। तो नित्य चीज क्या है, जो सदा हो, जो स्थिर हो, एक रस हो, अविनाशी हो, वो सत्य है। तो वो मैं हूं आत्मा। तो क्या है आत्मा, उसे हम पहचाने। आज मन इतना चंचल क्यों है, क्योंकि ये देह अभिमान रूपी ऐसा आवरण छा गया है जो आत्मा उस परमात्मा से नाता ही नहीं जोड़ सकती है। जैसे रबर लगा हुआ है तार को और हम करंट चाहते हैं तो कैसे करंट पास होगा, जोड़ने के लिए रबर को हटाना पड़ता है तब करंट पास होगा। अंदर की वायर, कॉपर वायर जो होती है तांबा, वो तांबे से जोड़ना पड़ता है। तो परमात्मा की स्मृति भी कैसे आएगी जब तक ये देह अभिमान नहीं छूटे। उसके लिए आत्मा का ज्ञान बहुत जरूरी है। अब कई कहते हैं हमको तो आत्मा का ज्ञान है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी, जलती नहीं, कटती नहीं, सूखती नहीं, गीली नहीं होती। ठीक है, हम जानते हैं, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर इतना ही पर्याप्त होता तो मन लगता परमात्मा में, तो भी नहीं लगता है क्योंकि आत्मा क्या चीज है ये पता ही नहीं। और मैं वो आत्मा हूँ यही पता नहीं है। कई लोग कह देते मेरे अंदर आत्मा है। अब मेरे अंदर आत्मा है माना मैं कोई अलग चीज हूँ और मेरे अंदर एक आत्मा है। मैं आत्मा इस शरीर में हूँ। चलो कोई ये भी मान ले मैं आत्मा इस शरीर में हूँ, पर क्या करती है इस शरीर में, कहाँ है वो शरीर में और क्या उसका संबंध है परमात्मा के साथ, और फिर कैसे परमात्मा से वो नाता जोड़े जो आज टूट चुका है। ये सब बातें राजयोग में बताई जाती है। जब भी हम किसी से पूछते हैं आप कौन हैं, तो जवाब तो बहुत सहज देते हैं। एक बच्चे से भी पूछो बेटा आपका नाम क्या है, कहेंगे मेरा नाम राजीव है, राजेश है, प्रकाश है, न जाने जो माँ बाप ने नाम रखा शरीर पर वो है बता देंगे। लेकिन जब तक वो नाम पड़ा माँ बाप ने रखा तब तक वो क्या था, कहेंगे बच्चा था। परिवर्तनशील है ये सब। शरीर के जितने भी जितनी भी कोशिकाएं हैं ये सब क्षण क्षण बदलती रहती, जैसे आयु बढ़ती जाती बदलती रहती है। हर 7-8 साल के बाद सब शरीर की कोशिकाएं बदल जाती है, इसीलिए पता चलता है चेहरे से आयु का। तो ये तो सब परिवर्तनशील है ना, पर मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। तो क्या है आत्मा और कहां है शरीर में और कैसे कार्य करती है। शरीर का नाम वास्तव में मेरा नाम नहीं है, ये तो शरीर का नाम है। जब हम किसी को पूछते हैं आप कौन हैं, तो चलो कहेंगे मैं सेठ हूँ, मैं साहूकार हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, वकील हूँ, अच्छा है। पर ये तो आपका व्यवसाय है, ये आपका कार्य है, आप ये नहीं है। अब आप कहेंगे मैं एक डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर तो आप जब हॉस्पिटल में है कार्य कर रहे हैं वो उस सेवा में लगे हुए हैं तो आप डॉक्टर हैं। पर जब घर में आते हैं पत्नी है बच्चे हैं तो आप कहेंगे मैं डॉक्टर हूँ। वो आपकी पत्नी कहेगी वो हॉस्पिटल में रखो, यहाँ नहीं ये बातें करो, यहाँ तो तुम मेरे पति हो। बच्चे कहेंगे आप मेरे डैडी हो, डॉक्टर मत कहो। तो पिता के आगे आप बच्चे हो, पत्नी के आगे आप पति हो, बच्चों के आगे आप बाप पिता हो, भाई के आगे आप भाई हो। तो वो अभिमान आप सबको नहीं दिखा सकते हो। दफ्तर में कोई मैनेजिंग डायरेक्टर हो, अपनी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हो, लेकिन घर में तो उसकी पत्नी मैनेजिंग डायरेक्टर है। एक बार वो जोक सुनाते हैं कि एक व्यक्ति ऑफिस में इलेक्शंस में वो खड़ा हुआ वाइस प्रेसिडेंटशिप के लिए, तो हार गया तो बड़ा दुखी मन से घर लौटा कि मेरा इलेक्शंस में हार हो गई वाइस प्रेसिडेंटशिप की। तो पत्नी कहती कोई बात नहीं, घर में तो हो ना आप, है ना, पत्नी के लिए तो प्रेसिडेंट तो वही है ना, पत्नी घर तो वही चलाती है, हुकुम सरकार का, पर राज्य तो रानी का होता है ना घर के अंदर, इसीलिए होम मिनिस्टर कहा है ना सभी को माताएं। तो ये जो जितने भी व्यवसाय हैं ये तो हमारा कार्य है और उस एक स्थान पर अलग अलग रोल बजाते, जैसे एक एक्टर अलग अलग रोल बजाता है। कितने रोल बजाते हैं सुबह से लेकर रात्रि तक, अलग अलग अभिनय अलग अलग व्यक्तियों के साथ, जैसे अलग अलग वस्त्र पहनते हैं, है ना, रात की ड्रेस अलग होगी, पार्टी की ड्रेस अलग होगी, किसी के मृत्यु पर अलग कपड़े पहनेंगे, शादी पर अलग पहनेंगे, घर में बैठेंगे तो अलग पहनेंगे, अलग अलग वस्त्र है। तो शरीर भी क्या है, मैं कौन हूँ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। विवेकानंद जैसे कितने महान पुरुष हो गए, साधारण रूप में वे भी नहीं जानते थे मैं कौन हूँ। जब पहली बार विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास गया, साधारण नरेंद्र नाम था उसका, और स्वामी जी ने पूछा आप कौन, तो उसने कहा स्वामी जी यही तो मैं जानने आया हूँ। और स्वामी ने महसूस किया कि ये मेरा पक्का शिष्य बनेगा, क्योंकि ये जिज्ञासु के रूप में आया है, जिज्ञासा रख करके आया है तो अवश्य प्राप्ति होगी। पर कई ऐसे लोग हैं जो जिज्ञासा भी नहीं रखते हैं। एक व्यक्ति से मैंने पूछा आप बताओ आप कौन है, तो पता है क्या जवाब दिया, कहते मैं कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं। मैंने कहा कुछ भी नहीं हो, कुछ तो हो तभी तो कह रहे हो, अगर कुछ भी नहीं होते तो वो कुछ नहीं कहेगा क्या कि मैं कुछ भी नहीं हूं कुछ भी नहीं है तो कहेगा भी नहीं ना, तो कुछ तो हो तभी तो आप कह रहे हो। तो मैं बताता हूं मैं कुछ नहीं हूं, बस गुस्सा आ गया बहुत। तो मैं बड़ी शांत हो गई, तो मैंने कहा अच्छा आप जानना चाहते हो आप कौन हो, कहा नहीं जानना भी नहीं चाहता। तो बताइए उसका भविष्य कितना अंधकार में है, बहुत डिप्रेशन जब आती है ना एकदम निराशा जीवन में, तब ये तब ऐसा जवाब निकलता है। अब जीवन में निराशा आ गई तो बाकी जीवन ही बेकार ना, तो जीवन जीवन ही नहीं रहता उस समय, जैसे जीवन कोई बोझ के रूप में चला रहे हैं। जैसे मनुष्य मर गया तो अर्थी अपने आप तो नहीं चलेगी ना, चार जनों को कंधे पर रखना पड़ता है, उसको उठाना पड़ता है, अपने आप नहीं चल सकता। अभी जीवित है तो अपने आप चलेंगे ना, पर कोई जीवित ही अपने आप नहीं चल सकता है तो वो दूसरों के लिए बोझ बन जाता है ना, कितना बड़ा बोझ होता है, बेचारे को चलाना पड़ता है, उसको महसूस होता है अरे मुझे सब चला रहे हैं। तो जीवन ही एक बोझ बन जाता है, कैसे, अगर जीवन में शांति नहीं, प्रेम नहीं, सुख नहीं, खुशी नहीं, आनंद नहीं, शक्ति नहीं, तो जीवन जीवन नहीं है, वो एक बोझ है। वो समझेगा बस मैं मर जाऊं अच्छा, अरे जीवन तो कितनी अच्छी चीज है, ये तो भगवान का वरदान है। परंतु वो वरदान तब महसूस हो जब जीवन में शांति, खुशी, आनंद हो। पर क्यों नहीं है वो जीवन में, फिर उनसे पूछो आपको क्या चाहिए, कहेगा कुछ नहीं चाहिए, चाहिए भी कुछ नहीं, फिर जीवन में शांति क्यों नहीं, उनको ही नहीं पता कि क्या चाहिए कई बार ऐसे भी होता है। तो किस लिए ये सब है, क्योंकि इसका असली कारण ये है हम कौन हैं और क्यों आए हैं इस संसार में ये भूल गए। तो वास्तव में हम एक आत्मा हैं, एक ज्योति है, प्रकाश का पुंज है, एक चमकता हुआ सितारा है, इस शरीर के अंदर एक चैतन्य शक्ति है। आंखें तो खिड़कियां हैं केवल, बस खिड़कियों से हम देखते हैं, खिड़कियां तो साधन है ना, खिड़की थोड़ी देखती है बाहर, वो तो केवल एक लकड़ी की चीज बनी हुई है जिससे कोई देखता है। एक कैमरा में लेंस फिट होती है, वो कैमरा का क्लिक हुआ परंतु जो फोटो नेट उस लेंस के थ्रू गया, उसकी किरणें, प्रकाश की किरणें अंदर छप गई। तो आंखें एक लेंस का काम करती है, एक खिड़की का काम करती है बस, पर छपा कहां, अनुभव किसको हुआ, आप कहेंगे मस्तिष्क में, पर मस्तिष्क भी एक साधन है, मस्तिष्क साधक नहीं है। जैसे ये इंद्रियां साधन है, मस्तिष्क भी एक साधन है। कई कहते हैं कि मस्तिष्क में ही सब यादें रहती है, अब यादें मस्तिष्क की ही शक्ति है, तो कई ऐसी यादें हैं जो पूर्व जन्म से आती है। कई छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो पूर्व जन्म की बातें करते हैं, बहुत हमारे पास कहानियां है इसके, मिसाल है, पूर्व जन्म की बातें करेंगे, कई भविष्य की बातें करते हैं, जैसे उनको दिखाई देता है भविष्य, तो वो कौन से मस्तिष्क में याद है, पूर्व जन्म में तो ये मस्तिष्क नहीं था ना, और भविष्य तो अभी तक उसमें प्रिंट हुआ ही नहीं है, तो कैसे उसको दिखाई देता है? तो मस्तिष्क भी सब कुछ नहीं है। कई ऐसे लोग हैं अपना अनुभव सुनाते हैं कि मैं मर गया था, बिल्कुल वो शमशान पर ले गए थे, वो उसको जलाना भी चालू किया और एकदम से वो हिलने लगा, तो लकड़ी निकाली उसको बुझाया, एक व्यक्ति आया था मुंह सारा जला हुआ, शरीर था ठीक पर मुंह जला हुआ, बोला मैं तो मर गया था, वो अग्नि वो मुखाग्नि भी दी थी और एकदम से मैं हिलने लगा, तो लोगों ने कहा कि अरे ये क्या हो गया, तो हमने पूछा आपको क्या महसूस हुआ, तो उसने बताया कि मुझे गर्मी लगने लगी। आत्मा तो अंदर ही थी, क्या पता उसके बीच क्या हुआ, इसको कहता है मुझे कुछ पता नहीं। परंतु और भी कई अनुभूतियां हैं, ऑपरेशन थिएटर पर कोई इंसान मर जाता, थिएटर में ऑपरेशन होते होते मर जाता है, एकदम पल्स भी बंद, हार्ट बंद, सब बंद, ब्रेन भी बंद, सब खत्म। अब डॉक्टर्स आपस में बातचीत करते हैं, अभी तो गया, और 10 मिनट के बाद वापस आ जाता है और वो बताता है कि मैं ऊपर से देख रहा था, ऊपर से आपको देख रहा था, और अब क्या बातचीत कर रहे थे वो भी सुन रहा था, और मैं अपने शरीर को भी देख रहा था, शरीर तो मृतक पड़ा है, बिल्कुल पथरा गई आंखें, कुछ भी नहीं, श्वास नहीं, पल्स नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ऊपर से कैसे देख रहा था, आंखें तो शरीर में थी, तो कौन सी आंख देख रही थी, फिर क्या बात कर रहे थे डॉक्टर्स आपस में वो भी सुन रहा था, वो भी क्या मैं सुन रहा था, तो कान तो शरीर में थे वो तो नहीं सुन रहे थे, फिर कैसे सुन रहा था? तो जरूर शरीर के अलावा भी कोई शक्ति है जिसमें कान है, आंख है, देख सकता है ना, अनुभव कर सकता है। अब वो चीज है वास्तव में आत्मा। तो मैं कौन हूं? एक आत्मा हूं, एक ज्योति हूं, प्रकाश का पुंज हूं, चमकता हुआ सितारा हूं, चैतन्य शक्ति हूं। इस शरीर से पहले भी मैं थी और शरीर के बाद भी मैं रहूंगी। आत्मा को कोई जला नहीं सकता, काट नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, गीली नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नित्य हूं, प्रकृति से परे हूं। तो प्रकृति का प्रभाव आत्मा पर स्थूल रूप में नहीं पड़ सकता है। तो वो मैं आत्मा चैतन्य शक्ति अजर अमर अविनाशी हूं, तो कहां से आई हूं? क्योंकि ये संसार तो शरीर का घर जरूर है, शरीर पंच तत्वों का पंच तत्वों में चला जाएगा, पर मैं भगवान के घर से आई हूं, और भगवान के पास जाना है तो पहले कि भगवान का घर कहाँ है, फिर है कि भगवान के घर से क्यों आई, फिर है कि कब जाना है और कब आई, अब ये प्रश्न है जरूर। अब इसका उत्तर राजयोग में मिलता है। तो सबसे पहले हम कहां से आए हैं, इसका बहुत बड़ा प्रूफ है कि जब जब दुखी होते हैं हम ऊपर की ओर देखते हैं, हे भगवान बस उठा लो इस दुनिया से, नहीं जीना। हाँ, कई बार करते ना दुखी होकर के, तो ऊपर की ओर देखते हैं, कहां ऊपर की ओर, समझते ना भगवान कहीं ऊपर है, मुझे उठा लेगा, या कई बार कहते भगवान बस तुम आ जाओ इस धरती पर, बहुत अधर्म हो गया है संसार में, अधर्म का नाश होना चाहिए, तो भगवान को अभी आना चाहिए, तो कहां से आना चाहिए, कहां है उसका घर। तो अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो संसार है ये पांच तत्वों का संसार है, सूर्य चांद सितारे इस ब्रह्मांड के या मांडवे की रोशनियां हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये पंच महाभूत इसके भीतर है, परंतु इसके पार भी कुछ है जिनको ये आंखें नहीं देख सकती, जिनको विज्ञान का कोई यंत्र नहीं देख सकता, न विज्ञान का कोई यंत्र उसको माप सकता है वो कहां है क्या है। ये तो आत्मा ही अनुभव कर सकती है, क्योंकि विज्ञान भी तो जो भौतिक चीजें है उसी से ही बनता है, जो कुछ भी विज्ञान की चीजें बनी है। तो पंच तत्वों से पार क्या है, एक छठा तत्व है जिसका दिव्य साक्षात्कार होता है, जिसे अखंड ज्योति का महतत्व कहते हैं। इसका साक्षात्कार अनेक ऋषि मुनियों ने किया है, योगियों तपस्वियों ने किया है, जिसे ब्रह्म महतत्व कहते हैं। पार ब्रह्म परमेश्वर तू सबके स्वामी हम गाते रहते हैं, वो पार ब्रह्म क्या चीज है। जो पंच तत्वों से पार का एक महतत्व है, सुनहरा लाल प्रकाश का वो महतत्व है, ये सुनहरा लाल नहीं जो इस सफेद प्रकाश से मिलता है, सात रंग में लाल, पर उनसे भी परे वो छठा अखंड ज्योति का तत्व है, जो हम सब आत्माओं का घर है, जिसके अनेक नाम हैं, परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, परलोक, मूल वतन, निराकारी दुनिया, शिवपुरी आदि आदि। अब उस धाम से हम आत्मा इस सृष्टि पर आए हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर से बहुत समय निकल कर यात्रा पर होता है ना, तो घर बहुत याद आता है, दिल होता बस कभी घर पहुंचे, कभी घर पहुंचे। तो परमात्मा कहते हैं तुम आत्माओं को भी वो घर याद आता है। कई कहते हैं अच्छा अगर हम उस घर के रहने वाले थे फिर इस दुनिया में क्यों आए। अब इसका कारण है, बिना कारण के कोई नहीं आता है, कुछ तो कारण होगा ना। तो परमात्मा ने हमें इसका कारण भी बताया, तीन कारण थे संसार में आने के। और हम पूछें कि जिस लक्ष्य को लेकर के हम इस संसार में आए थे वो लक्ष्य हम पूरा कर रहे हैं। सबसे पहला कारण था इस संसार में आने का, क्योंकि ये सृष्टि एक रंगमंच है, इस रंगमंच पर एक्टर के रूप में, अभिनेता के रूप में हमारा आना हुआ। जैसे मंच पर कोई एक्टर एक्टिंग करने आता है तो बस एक्टिंग करना ही उसका कर्तव्य है, मंच की जो चीजें हैं उनसे उसका मोह नहीं है। मंच में पर जो अन्य पात्र पाठ बजाते हैं उनसे उनका मोह नहीं है, बस अपनी एक्टिंग से उसका काम है। व्यवहार करते, कर्म करते, वस्तुओं का आदान प्रदान करते, उनका उपयोग करते, फिर जब नाटक पूरा होता है सब वहीं की चीजें वहीं, वस्त्र भी वहीं, और अपने जो ओरिजिनल ड्रेस है उसमें जाएगा, वो उसकी चीजें नहीं है, वो तो मंच की चीजें। अगर मंच पर कोई पत्नी का भी पार्ट बजाता है, कोई पति का, कोई बच्चे का, कोई क्या कोई क्या, जब मंच का पार्ट पूरा हुआ फिर पत्नी और बच्चे वही हुए क्या, वो तो बस वहीं के वहीं, घर में तो दूसरी पत्नी बैठी है मंच की पत्नी दूसरी है, लेकिन उसको पता है पार्ट बजाते समय ये सब टेम्पररी है, ये अस्थाई है, ये स्थाई नहीं है। तो पहला कारण इस संसार में आने का पार्ट बजाना, कहीं कहते क्या जरूरत थी इसकी भी, अब किसी के अंदर एक्टिंग की कला है तो बजाएगा ना पार्ट, एक्टर्स कैसे बने, कला है वो। तो उनको किसी ने कहा तुम बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हो तो जाओ बॉलीवुड में जाओ, तुम एक्टर अच्छे बन सकते हो, क्योंकि ये कला है। तो हमारे के अंदर कर्म करने की कला है, हर आत्मा में कर्म करने का संस्कार है, और उसके लिए शरीर चाहिए। तो शरीर रूपी साधन मिलेगा तभी तो कर्म करेंगे, मंच मिलेगा तभी तो उसकी एक्टिंग करेंगे उसमें। तो इसलिए शरीर एक वस्त्र है, संसार एक रंग मंच है, पर एक्टिंग ही करनी है बस, और आगे कुछ नहीं। पर हम क्या करते हैं, कर्म करते करते उसमें फंस जाते हैं। फिर फंस जाते हैं, फिर दुखी भी होते हैं, फिर छूटना चाहते हैं तो छूट नहीं सकते हैं। और फंसते क्यों हो? बस यही हमें कला आनी चाहिए। दूसरी बात, हम क्यों आए इस संसार में? आत्मा बहुत बड़ी गुणवान है, कलाकार तो है पर गुणवान भी है। आत्मा के अंदर वही गुण सब निहित है जो वो जीवन में चाहती है, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, ये आत्मा की विशेषताएं हैं, यही आत्मा की शक्ति है। जैसे शरीर पंच तत्वों का बना हुआ है, ये शरीर की शक्ति है। कोई चीज की कमी होगी तो हमें वो चाहिए, क्योंकि शरीर उसका बना हुआ है। इसलिए पानी भी पीते हैं, भोजन करते हैं, हवा लेते हैं, क्योंकि शरीर इसी का बना हुआ है। अब आत्मा पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति का ही समूह है, इन्हीं गुणों का ही स्वरूप है। इसलिए कहते हैं, आपको अगर ये गुण चाहिए तो बाहर जाने की जरूरत नहीं, सब आपके अंदर है। शांति चाहिए तो आपके अंदर है, प्रेम चाहिए तो अंदर है, खुशी चाहिए तो अंदर है, बाहर में कुछ नहीं है। अब शरीर के लिए ऐसे नहीं कहेंगे अंदर है, भूख लगी है तो बाहर से खाना पड़ता है, प्यास लगी है तो बाहर से मुंह द्वारा पानी पीना पड़ता है, हवा चाहिए तो भाई खिड़की खोलो, दरवाजे खोलो, सांस लेना है, या ऑक्सीजन नहीं ले पाता है तो बाहर से ऑक्सीजन देते हैं ताकि सांस ले सके, वो बाहर से चीज है। परंतु शांति, प्रेम, सुख, आनंद, ये बाहर से नहीं है, ये अंतर आत्मा की शक्ति है। अब विडंबना तो ये हो गई है कि जो चीज अंदर है हम उसको बाहर से ढूंढ रहे हैं, जैसे खाना पीना है हम बाहर से ढूंढते हैं, और परिणाम स्वरूप वो हालत हो गई है कि जैसे कहा जाता है, एक काली बिल्ली को कोई ढूंढ रहा था अंधेरी कोठड़ी में, तो क्या होगा? काली बिल्ली को अंधेरी कोठड़ी में ढूंढने की कोशिश करते हैं और वो है भी नहीं वहां। या तो फिर दूसरा मिसाल दिया जाता है, जैसे एक व्यक्ति घर की चाबी लगा रहा था घर खोलने के लिए, और चाबी लगी नहीं, गिर गई, परंतु अंधेरा था वहां तो उसको दिखाई नहीं दी चाबी, कैसे दरवाजा खोले, बहुत ढूंढा, फिर चारों ओर नजर घुमाई तो रास्ते की लाइट जल रही थी, तो वहीं ढूंढने लग गया चाबी। लोगों ने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? तो बोला, मेरे घर की चाबी गिर गई है, मैं कैसे जाऊं घर में, तो वो भी ढूंढने लग गए। जैसे वो ढूंढ रहा बेचारा घर कैसे जाएगा, तो किसी ने पूछ लिया कि बताओ तो सही, गिराई कहां? कहा, गिराई तो घर के पास। तो घर के पास गिराई तो यहां क्यों ढूंढ रहे हो? वहीं ढूंढो ना जहां गिराई। कहा, नहीं, वहां तो अंधेरा है ना, तो ढूंढेगा वहीं जहां रोशनी है ना, अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। तो हम शांति, प्रेम, सुख को बाहर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यहां चकाचौंध है ना, बहुत लाइट है, तो लगता है वहीं से मिल जाएगा, वहीं से मिल जाएगा। कोई शराब में ढूंढ रहा है शांति, कोई घूमने फिरने में ढूंढ रहा है, कोई सिगरेट में ढूंढ रहा है। मैं दो चार दिन पहले 10-12 साल का लड़का रास्ते में मजे से सिगरेट पी रहा है, 12 साल का लड़का सिगरेट पी रहा है। मैंने कहा, अरे तुम इतना छोटा बच्चा तुम सिगरेट पीते हो? कहता है, मजा आता है, मजा। मैंने कहा, क्या मजा आता है? बस मेरे सामने दिखा दिया, इतना छोटा, मैंने कहा कमाल है, तो मजा आता है। पर मजा क्या आता है? वो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होता है, पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ तो धीरे धीरे उसके अधीन हो गए। तो कहा जाता है 6 फीट का इंसान और 3 इंच की सिगरेट, तो 6 फीट का इंसान 3 इंच के सिगरेट का गुलाम, उसके बिना नहीं रह सकते, चैन नहीं, सिगरेट चाहिए, सिगरेट चाहिए, शराब चाहिए, शराब चाहिए, उसके बिना रह नहीं सकते, आदत हो गई। तो मजा क्या आया, उसके अधीन हो गए, मजा थोड़ी है, तो बंधन में बंधते गए। और इंसान सोचता नहीं है, तो शांति कहाँ से आएगी, खुशी कहाँ से आएगी, ये सब हमारे चिंतन में है। शांति कैसे मिल सकती है, कितनी दूर है शांति हमसे, वास्तव में एक सोच की दूरी पर है। तो लेना लेना ही सोच लिया। इंद्रदेव की कहानी है कि असुर और देवताएं इंद्रदेव के पास निमंत्रण पर गए, क्योंकि असुरों ने कहा कि हमको कभी इंद्रलोक में इंद्रदेव बुलाते क्यों नहीं है, देवताओं को ही क्यों बुलाते है, कहानी है। तो असुरों को भी निमंत्रण दिया एक भोज पर, परंतु एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि भोजन खाने के लिए हाथ को नहीं मोड़ना है। खूब व्यंजन रख दिए, लड्डू पेड़े, खूब खाने की चीजें रखी, परंतु ये शर्त थी कि हाथ नहीं मोड़ के खाना है। अब कैसे खाएंगे, तो असुरों को पहले निमंत्रण दिया, हाथ पर डंडा बांध दिया ताकि मुड़े नहीं, ये तो कोई छिप छिप के भी मोड़ के खा सकता है ना। अब डंडा जो बांध लिया तो कैसे खाएंगे, तो लड्डू पेड़े हाथ में उठा के उछाला हवा में और मुंह खोल दिया ताकि हवा से तो अंदर जाए। अब हाथ ऐसा और मुंह खुला और आंखें ऊपर और सब ऐसे ही, तो क्या हुआ होगा, समझ सकते, सब एक दो को धक्का ही दिया, धक्का दे के एक दो को गिराया कि ये लड्डू मेरे मुंह में जाए, तो धक्का दे के गिराए तो लड्डू किसके मुंह में जाएगा, सब गिरे लड्डू उनके ऊपर या वो लड्डू के ऊपर, किसी के भी मुंह में नहीं गया। फिर देवताओं की बारी आई। अब देवताओं का भी शर्त वही थी, ये नहीं कि पक्षपात किया इंद्रदेव ने, पक्षपात नहीं किया, उनको भी बांध दिया ताकि हाथ मोड़े नहीं, मुंह में नहीं, खुद हाथ से अपने हाथ से मुंह में नहीं डाले। तो देवताओं ने कैसे खाया, हाँ? देखो आप ज्यादा समझदार हो उन असुरों से, हाँ? एक दो को खिलाया, दूसरे के मुंह में डाला, अपने मुंह में तो नहीं डाल सकती हूँ, कम से कम आपके मुंह में तो डाल सकती हूँ ना, हाथ सीधा है तो आप मेरे मुंह में डाले, मैं आपके मुंह में डालू। लेकिन असुरों ने ऐसे नहीं सोचा, इसीलिए असुरों के लिए कहावत है, मेरा तो मेरा तेरा भी मेरा, तो लड़ झगड़ करके, मारा मारी करके, खून करके, हेरा फेरी, झूठ, छल, कपट, निंदा, चुकली, अपमान, न जाने क्या क्या हम हथकंडे पैदा करते रहते हैं कोई तरीके, ताकि दूसरे की चीज को मैं जब्त कर सकूं, अपना बना सकूं। और देखो जीवन का लक्ष्य भूल गए कि हम गुणों का आदान प्रदान करने संसार में आए, वस्तु देना यही कोई लक्ष्य नहीं है, ये नहीं कि देना माना वस्तु देना, पर भाव है उसके पीछे प्रेम बांटने आए। जैसे किसी के जन्मदिन पर आप उसको कोई एक सौगात देते हो और उसको मुबारक देते हो, जन्मदिन की मुबारक, शादी पर जाते तोहफा देते हो, तो तोहफा जो देते हो सौगात, वो तो नाम की चीज है, बस नाम मात्र है, वास्तव में तो आप प्रेम अपना प्रकट कर रहे हो, तो इसलिए वस्तु के रूप में एक सौगात दी। तो परमात्मा कहते हैं संसार में इसीलिए आए, प्रेम प्रकट करने, व्यक्त करने, क्योंकि आत्मा के अंदर वही गुण है, तो गुण कर्म द्वारा ही तो प्रकट होगा। तो परमात्मा कहते हैं संसार में इसीलिए आए, प्रेम प्रकट करने, व्यक्त करने, क्योंकि आत्मा के अंदर वही गुण है, तो गुण कर्म द्वारा ही तो प्रकट होगा। इसमें वस्तु का आदान प्रदान भी होता है, परंतु वो भूल गए और वस्तुओं का संग्रह करना यही सोच लिया, और दूसरों से गुण मांगने लगे, भगवान से भी मांगने लगे, जो चीज मेरे पास थी वो मांगने लगे दूसरों से, क्योंकि स्वार्थ बढ़ गया और अपने अंदर झांकने का टाइम ही नहीं, यही इंसान की हालत हो गई है। तो अब राजयोग हमें सिखाता है कि अभी पहचानो अपने वास्तविक स्वरूप को, तुम कौन हो, तुम एक आत्मा हो और ये गुण तुम्हारी शक्तियां हैं, पहचान करके इनको कर्म में लाओ, आंखों द्वारा प्रेम, मुख द्वारा प्रेम ज्ञान सुख, हाथों से सुख दो, तो जैसा करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। सुख दोगे तो सुख मिलेगा, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, और डबल होके मिलेगा। विशेषता तो इन गुणों के कि जितना बांटोगे उतना आपका डबल होकर के मिलेगा। वस्तु बांटोगे तो फिर भी आपकी कम हो जाएगी, 10 रुपया आपके जेब में है और 5 किसको दिया तो आपके पास 5 बचेगा, 20 नहीं हो जाएगा। परंतु शांति बांटोगे वाणी द्वारा, संकल्प द्वारा, कर्म द्वारा, खुशी बांटोगे तो आपकी खुशी कम नहीं होगी। इसीलिए कहते धन दिए धन ना खुटे। वो कौन सा धन है जो बांटने से बढ़ता है? ज्ञान धन, प्रेम धन, शांति धन। ज्ञान भी धन है, बांटने से बढ़ता है। अगर नहीं बांटा ना आपके पास भी सड़ जाएगा, और जितना बांटेंगे उतना और बढ़ेगा, क्योंकि चिंतन आपका उसी अनुसार चलेगा। तो हम आत्मा इसलिए आए संसार में। और तीसरा कारण, पहला कारण बताया हम आत्मा बहुत बड़ी कलाकार है, कर्म करने लिए आए संसार में। दूसरा गुण बांटने आए, और तीसरा उस परमात्मा को प्रत्यक्ष करने आए। परमात्मा को प्रत्यक्ष करने आया क्योंकि हम किसके बच्चे हैं? जैसे भारत सरकार अपने विद्यार्थियों को विदेश भेजती है, स्कॉलरशिप दे करके विदेश में पढ़ने लिए भेजती है। क्यों भेजती है? क्योंकि देश का नाम रोशन कर सके। और वो देश का नाम रोशन करते हैं, कई भारत के इस विद्यार्थी वहां जाकर कितना फलीभूत होते हैं, तो कहने में तो आएगा ना भारत का है वो, ओरिजिनल फ्रॉम इंडिया। तो इसीलिए परमात्मा के हम बच्चे उसका नाम कहाँ रोशन कर रहे हैं? रोशन कर रहे हैं या बदनाम कर रहे हैं? लौकिक में अगर कोई गलत काम करता है तो पिता का भी नाम बदनाम होता है ना, कि केवल बच्चे का ही नाम बदनाम होता है? पूछेंगे किसका बच्चा? तो परमात्मा के हम सब बच्चे हैं, आत्मा रूप में भाई भाई हैं, वसुधैव कुटुंबकम है ये। अब उस हिसाब से अपनी आत्मा को अभी पहचानो, क्या हूं मैं आत्मा चेतन शक्ति? कैसे शरीर से मैं कर्म करती हूँ? तो वास्तव में आत्मा के पास 3 शक्तियां हैं। सोचने के लिए मन है, मन आत्मा की शक्ति है। कई लोग समझते हैं मन तो अलग है आत्मा से और मन सदा ही चंचल है। हम कहते हैं नहीं, मन आत्मा की ही तो शक्ति है। हम इसमें कई सोच लाते हैं मन में, अच्छे बुरे, क्यों? क्योंकि मन इस समय प्रकृति के प्रभाव में है। पर जैसे हम ये निश्चय करते हैं कि मैं एक आत्मा हूं, तो शरीर का मैं मालिक बन गया, तो ये मन इंद्रियों का मालिक बन जाता है। मन की तुलना हमने कई तरंगों से की है, क्योंकि मन एक सेकंड में कहां से कहां पहुंच जाता है, देर नहीं लगती। आवाज पहुंचने में फिर भी देर लगती है, लाइट पहुंचने में फिर भी देर लगती है, पर मन के विचार पहुंचने में देर नहीं लगती। एक सेकंड में अमेरिका पहुंच जाएगी। हाँ, मन ने सोचा और अमेरिका पहुंच गया मेरा मन, मेरे बेटे के पास या मेरे भाई के पास, जो भी अगर वहां है। तो शरीर पहुंचने में तो फिर भी 20 घंटे लगेंगे, परंतु मन से हम एक सेकंड में पहुंच सकते हैं, तो परमात्मा के पास भी एक सेकंड में पहुंच सकते हैं। इसीलिए भगवान के मां वाक्य, मन को मेरे में लगाओ। तो मन एक बहुत बड़ी शक्ति है, पर मन में सदा द्वंद्व चलता है। वर्तमान समय करूं नहीं करूं, अच्छा है बुरा है, देखूं न देखूं, जाऊं न जाऊं। परंतु अगर मन को थोड़ा सा शांत रख सको, आत्मा के ज्ञान से उसको शांत रख सकते हैं, तो उसके ऊपर की जो शक्ति है ना वो काम करना शुरू करेगी, जिसको हम कहते हैं बुद्धि। कहा जाता है सोच समझ कर कर्म करो। तो सोचने का काम मन का, फिर समझने का काम बुद्धि का, यही अंतरात्मा की आवाज है जो समझती है क्या उचित है क्या अनुचित है, उसको पता है। मन में तो बहुत विचार आएंगे लेकिन सभी विचार हम कर्म में नहीं लाते हैं। एक विचार आएगा इसको मार डालो, फिर दूसरा विचार आएगा अरे ऐसे कैसे क्या सोच लिया मैंने, है ऐसे थोड़ी सोचना चाहिए मुझे। तो मन ने दोनों प्रकार के सोच लिए तो बुद्धि ने उसको आवाज दी नहीं ये गलत है सोचना। तो बुद्धि की तुलना हमने क्या की, किससे की, एक तराजू से की है। जैसे तराजू वो दिखाते ना न्याय की देवी, उसके हाथ में तराजू है और आंखों पर पट्टी है। इसका अर्थ है निष्पक्ष न्याय, किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होना। इंसान आज प्रभावित हो जाता है इसीलिए न्याय सही नहीं दे पाता है। बुद्धि मन के वशीभूत हो गई है और मन इंद्रियों के वशीभूत है ना, तो प्रभावित है इसीलिए निष्पक्ष न्याय नहीं दे पाते। लेकिन निष्पक्ष न्याय का मतलब क्या है, कांटा एकाग्र हो, एकाग्र कांटा ही न्याय ठीक दे सकता है। अर्थात मन की विचारधारा एक रस हो, फिर डंडी जो सीधी होती है वो भी हिले नहीं। अर्थात मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय हानि लाभ सफलता असफलता सब में समान, एक बहुत बड़ी बात है। ये ज्ञानी तो आत्मा के लक्षण है, ये नहीं मान मिला तो बहुत फूल गए और अपमान हुआ तो निराश हो गए, नहीं। जैसे फुगा होता है ना, उसमें हवा भर दी तो बड़ा सुंदर दिखाई देने लगा और एक सुई मारी तो गया काम से, सुंदरता खत्म, एक सेकंड में हवा निकल गई। तो मान मिला तो फुगे की तरफ फूल गया और अपमान हुआ तो हवा निकल गई सारी, दुखी हो गया। तो क्या दूसरे हैं हमारे हमको दुख देने वाले, नहीं, ये हमारी सोच की बात है। तो अगर मैं अपने स्वमान में स्थित हूँ कि मैं तो एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, एक सुख स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, तो मुझे कोई भी दुख नहीं दे सकता है। इसलिए दो कान मिले, एक कान से सुना तो दूसरे कान से निकल गया। पर अपमान कब महसूस होता है, जब अभिमान आता है। अभिमानी व्यक्ति को अपमान भी बहुत जल्दी महसूस होता है। मैं अपने आप को बहुत होशियार समझता हूँ और किसी ने मुझे कह दिया चल मूर्ख कहीं का, तो अपमान महसूस हो, अरे मैं इतना होशियार और ये मेरे को मूर्ख कह रहा है, तो गुस्सा भी आएगा। अभिमान आया तो फिर गुस्से में क्या कहेंगे हम, तू मुझे मूर्ख कहता है, तू महामूर्ख। फिर ईद का जवाब पत्थर से, फिर वो और दो गाली देगा, फिर और हम चार देंगे, परिणाम क्या होता है, ये अपमान महसूस किया। पर अपमान क्यों महसूस करो, मैं तो स्वमान में रहूं, मैं एक शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। इसलिए बुद्धि वो सही निर्णय दे, इसलिए हर परिस्थिति में एक रस स्थिति, चाहे मान मिले चाहे अपमान मिले, मैं अपने मस्ती में रहूं, अपने स्वमान में रहूं, अंतर की शक्ति अपनाऊं। जैसे वो खिलौना होता है ना, नीचे भारी होता है तो उसको कितना भी हिलाओ वो गिरता नहीं है, और नीचे हल्का होगा तो क्या होगा, इधर किया तो लुढ़क गया, उधर किया तो लुढ़क गया। जैसे बेपेंदी का लोटा होता है, नीचे उसको पेंदी नहीं होती है रखने के लिए, तो वो गिरता ही रहेगा। तो मनुष्य की स्थिति भी आज ऐसी हो गई है, इसीलिए कई बार कहते मूड बदल, मूड बिगड़ गई, मूड बिगड़ गई। तो मूड बिगड़ती क्यों है, आज एकदम हंस रहा है, देखो हंस रहा है, अभी देखो रो रहा है, अभी अभी देखो चिल्ला रहा है, अभी अभी एकदम शांत हो गया, ये क्या है। हम उसकी तुलना पता है किससे करते, गिरगिट से। गिरगिट मालूम है, गिरगिट पता नहीं मराठी में क्या कहते हैं वो, हाँ वो उसकी बड़ी बड़ी आंखें होती है, छिपकली की तरह होता है और एकदम मुंह सिर ऊपर होता है उसका, हाँ समझ गए। तो उसका रंग बदलता रहता है, वो हरे में जाएगा तो हरा हो जाएगा, लाल में जाएंगे तो लाल हो जाता, पीले में जाएंगे तो पीला होता। उसका सिर बहुत ऊपर होता है, सिर ऊपर चढ़ा के चलता है। तो इस वो अभिमानी मनुष्य भी अभिमान से ऐसे सिर चला के चलता है। फिर किसी ने कुछ कह दिया, रंग बदलता गया उसका। पर योगी का सदा स्थिर एक रस अवस्था, हिलता डुलता नहीं है, बदलता नहीं है। इसीलिए हर परिस्थिति में समान ये बुद्धि की विशेषता होती है। और तीसरी बात है, ये जो पलड़े हैं वो समान और निष्पक्ष न्यायकारी, ये भी हिले डुले नहीं, ऊपर नीचे नहीं, और केवल वजन बताए बस, बाकी कुछ नहीं। चाहे हीरा डालो चाहे पत्थर डालो, वजन बताएंगे। तो जीवन के मूल्य वही बुद्धि बताए, वही बुद्धि की आवाज है। अंतरात्मा की पवित्रता नष्ट न हो ये बुद्धि आवाज देती है। परंतु होता क्या है, बुद्धि बिचारी बोल बोल के थक जाती है, क्योंकि मन चंचल वो इंद्रियों के वशीभूत, तो बुद्धि की आवाज को दबा देती है, देता है मन। बुद्धि की आवाज ही दब गई तो जैसे बेचारा कोई इंसान बोल बोल करके उसको मार डाला, समझो मार डाला तो आवाज खत्म, तो आत्मा का हनन हो जाता है, शक्तिहीन हो जाती है आत्मा। और फिर एक तीसरी चीज है, कई बार जब बुद्धि शक्ति खत्म कर देती अपनी, तो तीसरी चीज काम करने लगती है, और वो तीसरी चीज है संस्कार, जिसको कहते हैं आदत बुरी बला है। आदत के वशीभूत हो जाता है इंसान, और मनुष्य का जीवन जानवर से भी बदतर हो जाता है। जानवर भी स्वामी भक्त होते हैं, घोड़ा कुत्ता बड़े वफादार होते हैं, पर इंसान संस्कारों के वशीभूत होके जानवर तो क्या, असुर राक्षस से भी बदतर हो जाता है। जानवर पर भरोसा कर सकते, इंसान पर नहीं कर सकते, आज वो स्थिति हो गई है। बुद्धि का दुरुपयोग या बुद्धि की मलिनता, बुद्धि परवश हो जाना, अब उसकी बजाय अपने आप को पहचानो, मैं कौन हूँ, एक आत्मा हूँ, एक ज्योति हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, इस सृष्टि पर मैं एक अभिनेता हूँ, इस शरीर में मैं मेहमान हूँ, ये शरीर मेरी टेम्पररी एड्रेस है, शरीर में भी कहाँ है मेरा घर, ये भ्रकुटी, दो नेत्रों के ऊपर ये तीसरा नेत्र दिखाते हैं, यहाँ ये आत्मा का स्थान है, इसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं, जहाँ स्त्रियां तिलक लगाती है, ये आत्मा की निशानी है। इसलिए इस शरीर में मेरा टेम्पररी घर यहाँ है, और परमानेंट घर परमधाम है। परिचय पत्र में लिखते हैं ना, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, वर्तमान एड्रेस और स्थाई पता। से तो अस्थाई पता ये शरीर, उसमें भी यहाँ, और स्थाई पता परमधाम। तो हम सब आत्माएं उस धाम से आई है, ये शरीर एक टेम्पररी घर हमें मिला है, फिर वापस हमें उसी धाम में जाना है। ये शरीर एक वस्त्र है, अनेक वस्त्र बदले हमने, पर ये वस्त्र इस सृष्टि की चीज है, ये मेरी चीज नहीं है। ये वस्तुएं सब इस पृथ्वी की है, ये मेरी नहीं। या तो हम कहेंगे भगवान का दिया हुआ है तो अमानत है, मेरा नहीं। अब ये समझ करके हम राजयोग का अभ्यास करते हैं कि इस शरीर के भीतर मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा, अजर अमर अविनाशी, एक ज्योति, ये शरीर एक डिब्बी है और उसमें मैं एक हीरा हूँ, ये शरीर एक कुटिया है उसमें मैं योगी हूँ, ये शरीर एक मंदिर है मैं उसमें मूर्ति हूँ, बहुत कुछ सोच सकते हैं। ये शरीर एक दीपक है और मैं उसमें एक चमकती हुई ज्योति लव हूँ। एक शरीर या वस्त्र है और मैं एक एक्टर हूँ। अब ये चिंतन राजयोग का पहला कदम है और इसको कहते हैं आत्मचिंतन। तो पहले है आत्मज्ञान, फिर है आत्मचिंतन। जिस चिंतन में होता है आत्मनिरीक्षण कि मैं शांत स्वरूप आत्मा और मैं क्या अपने आप को समझ बैठा, तो निरीक्षण करके विश्लेषण, आत्म विश्लेषण करो। फिर उसके बाद होगा आत्म बोध, मैं तो हूं ही शांत स्वरूप। और यही आत्म बोध आत्म परिवर्तन कराएगा और ये आत्म परिवर्तन विश्व परिवर्तन कराएगा। तो चिंतन में क्या सोचो, तीन बातें। पहला चिंतन है कि इस शरीर में मैं कहां हूं, तो अपना ध्यान यहां फोकस करो, केंद्रित करो यहां ध्यान, जहां अन्य हठ योग समाप्त होते हैं राजयोग यहां आरंभ होता है। जब हठ योग करते हैं ना, शरीर के अनेक योग करते हैं, शारीरिक क्रियाएं करते हैं, फिर अंत में शवासन करते हैं और शवासन करते करते सब रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, ढीला छोड़ते फिर अंत में यहां पहुंचते हैं। अब राजयोग में आरंभ ही यहां से करते हैं, यहां से आरंभ करते हैं कि मैं एक चमकता हुआ सितारा दिव्य ज्योति हूं, अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, सत्य हूं, चैतन्य हूं, ज्योति स्वरूप हूं। ये पहला चिंतन। फिर इस शरीर से मैं भिन्न हूं, ये एक वस्त्र है, ये कुटिया है, आदि आदि जो बताया आपको, ये चिंतन है। तो ये पहला कदम है आत्मचिंतन का, ताकि आपको महसूस हो कि ये शरीर अलग चीज है और मैं इससे भिन्न हूं, तो डिटैच कर सके, न्यारा बना सके खुद को इस देह से। फिर दूसरा कदम है मैं कैसी आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शुद्ध स्वरूप हूं। सात मूल गुण है आत्मा के। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। जैसे सफेद रंग में सात रंग होते हैं ना, वैसे आत्मा सत्य है। इस सत्यता की शक्ति में सात गुण है, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप और शक्ति स्वरूप। ये गुण बाहर से नहीं मांगने हैं। शक्ति स्वरूप माना मनोबल, आत्मबल जो अंदर से ही आएगा। भले कई बार शरीर में बल नहीं होता है, ताकत नहीं होती है, पर आत्मा बहुत बलवान है। कई बार होता है ना, शरीर में दम ही नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, कर रहे हैं, आत्मा के बल से कर रहे हैं। और आत्मा में बल नहीं है ना, तो अगर शरीर कितना भी बलवान होगा, लगेगा ये तो मुर्दा है, क्योंकि निराश हो गए। तो निराश हो गए तो खे काम से, बोले शरीर कितना भी तंदुरुस्त है। तो इसीलिए मैं सत्य स्वरूप आत्मा, अविनाशी आत्मा, इन गुणों की स्वरूप हूं। और इसका चिंतन, जैसे जैसे चिंतन करते जाएंगे वैसा वैसा अंदर से ही उसकी अनुभूति होने लगेगी। इसीलिए कहते हैं आप जैसा सोचेंगे वैसा ही अनुभव करेंगे। और फिर तीसरा कदम आत्मचिंतन में है, मेरा घर कहाँ है, शांति का धाम, अखंड ज्योति का महतत्व। तो और मन बुद्धि की आंख से उसी धाम को देखो। जैसे यहाँ बैठे आप पूना पहुंच गए, सांगली पहुंच गए, हाँ, सतारा पहुंच गए, कहाँ कहाँ पहुंच गए, कितनी देर लगती है पहुंचने में? 1 सेकेंड। अब यहाँ बैठे मन से परम धाम पहुंच जाओ। पहुंच सकते हो? पहुंच सकते हो? नहीं पहुंच सकते हो ना? आप कहेंगे बहन जी कैसा, हमने देखा नहीं है। देखा है ना, भूल गए हो। देखा कैसे नहीं है? जब मन अशांत होता है तो उस घर को याद तो करते ही हो, अनजाने में भी करते हो, तो इसीलिए देखा है तभी तो याद करते हो ना, वहीं से ही तो आए हो, तो देखा कैसे नहीं है? जैसे बच्चा होता है ना, वो उसको वो कहेगा मुझे पता नहीं मेरा जन्म कहाँ हुआ। पता कैसे नहीं है? वहीं तो पैदा हुआ है, तो कैसे नहीं पैदा हुआ? पर तो फिर भी उसको तो भूल गया है। तो माँ उसको याद दिलाती है, पिता याद दिलाता है कि तुम कहाँ पैदा हुए थे, तुम कहाँ थे बचपन में 2 साल तक। तो आत्मा कहाँ से आई है ये हम भूल गए हैं, इसलिए परमात्मा अब हमें याद दिलाते हैं कि हे आत्माएं, तुम उसी परम धाम के वासी हो, अब चलो उस घर में। 1 सेकेंड में न्यारे हो जाओ इस शरीर से, शरीर की वस्तुओं से, वैभवों से, संबंधों से, और उसी धाम में खुद को देखो। अखंड ज्योति के महतत्व में मैं एक चमकता हुआ सितारा आत्मा विराजमान, और मेरे अंदर पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, ये किरणें है, शक्ति है, वो मैं किरणें बिखेर रहा हूं। बहुत सुंदर आप अनुभव करेंगे, ये शरीर तो भूल ही जाएगा।